تفسير: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا, اور تحقیق ہم نے دی, عطا کی ہم نے, بخشی تھی کس کو؟ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو. کیا دی تھی ان کو؟ رشدہ, اس کی رشد. اہم بات کیا ہے؟ اس کی رشد, اس کی ہوش مندی. من قبل, اس سے بھی پہلے. وکنا بہی عالمین, اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اور انبیاء کے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے, انبیاء کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو تھے نا وہ ہمارے رول ماڈل تھے. اور اوپر سورۃ الانبیاء آیت 24 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی کہلوایا تھا کہ ہاذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, کہ یہی تعلیم جو میں دے رہا ہوں تمام انبیاء نے جو ہے وہ مجھ سے پہلے دی تھی, ہے نا. تو اب کچھ انبیاء کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت تھے, نبی تھے, رول ماڈل تھے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی صاحب شریعت تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام ہیں, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, پھر اس کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ جلیل القدر نبیوں کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. تو اور یہ سب ذکر کرنے سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں, اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت تھی جو کہ دوسرے انبیاء کی دعوت تھی, اور جو خصوصیات دوسرے انبیاء میں تھیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں, اور جو انجام دوسری قوموں کا ہوا اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے نتیجے میں, وہی انجام اہل مکہ کا ہو سکتا ہے اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھٹلایا. تو اس پس منظر میں جو ہے وہ آپ ان آیات کو سمجھیں. تو سورۃ انبیاء میں آغاز میں رسول اللہ کا ذکر, اور یہ پیچھے آیت 48 میں ذکر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تن ذکر ہے نا. اور اب یہاں پہ جو ہے وہ آیت 51 میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے, اور اس وقت وہاں کا ماحول کیا تھا کہ پورے شہر پہ شرک کا ماحول چھایا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سلیم الفطرت, جو ان کے اندر سلیم الفطرت پائی جاتی تھی, اور جو وہ حنیف مسلم تھے, کہ پورا ماحول مشرکانہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے متاثر نہیں ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چیزوں کو خود اپنی عقل سے جانچا پرکھا, اور ماحول کے الٹ توحید جو تھی نا اس کی صداقت کو پایا. تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ خوب پھر نوازا. کیوں؟ یہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ہے نا. اور جب ابراہیم جو ہے وہ آزمائشوں پر پورا اترے تو میں نے ان کو کیا کیا؟ متقیوں کا امام بنا لیا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے تو ہی نا امام بناتے, بلکہ کیا ہے کہ آزمائش میں جب کوئی پورا اترتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ امام بنا لیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جیسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کو آزمایا اور خوب آزمایا, ہے نا. کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے تجھے موسیٰ آزمایا اور خوب آزمایا, تو اس کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو پھر ان کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنی پیغمبری کے لیے جو ہے وہ چن لیا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ, اور تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو, رُشْدَهُ, اس کی رشد. رشد کے نا دو معنی ہیں, ایک اس کے معنی ہیں ہوشیاری, حسن تدبیر, ہوش مندی, ایسی ہوش مندی جس سے انسان اپنا فائدہ نقصان, اچھا برا, خیر شر, نیک بد وغیرہ جو ہے اس میں تمیز کر سکے, اس میں فرق کر سکے. جیسے آپ دیکھیں سورۃ نساء آیت 6 میں آپ نے یتیموں کے بارے میں پڑھا, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, کہ جب تم ان میں رشد پاؤ, حسن تدبیر, حسن معاملہ, ہوشیاری پاؤ, تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو, ہے نا. تو دوسرے اس کے معنی جو ہیں رشد کے کیا ہیں, ہدایت کے ہیں, نیکی کے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ کیا ہے, کہ آپ جو ہیں سیدھے راستے پر جو ہے چلنا شروع کر دیں. ہدایت کیا ہے کہ سیدھے راستے کی رہنمائی مل جائے اور انسان جو ہے پھر اس پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دے. اور رشد کیا ہے کہ سیدھی راہ اختیار کرنے کے بعد نیک عادت اور اطوار اس کو اپنا لیا جائے اور اس پر جو ہے وہ برقرار رہا جائے. تو ہدایت تو یہ ہے نا کہ بھلائی کا راستہ جو ہے, جو اللہ نے دکھایا ہے, اللہ نے جو بھلائی کے راستے کی رہنمائی کی ہے, تو انسان جو ہے اس کی طرف اپنا رخ کر لے, اللہ کی فرما برداری میں آ جائے. یہ ہدایت ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن رشد کیا ہے کہ جس راہ راست پر آپ آگے ہیں, جس نیکیوں کے راستے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے, تو آپ اس کے لیے جو نیک چلن, نیک عادتیں اور اطوار مطلوب ہے نا, وہ آپ اختیار کر لیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ اختیار کر لیں, بلکہ یہ ہے کہ پھر آپ اس پر جو ہے وہ ثابت قدم بھی رہیں, ہے نا. جیسے قرآن میں ہمیں اس کی ایک مثال ملتی ہے, الیس منکم رجل الرشید, کہ کیا تم میں ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں ہے کہ اتنا نیک ہو کہ جو نیکی کی تمیز بھی رکھتا ہو اور دوسروں کو بھی سلسلے میں جو ہے وہ سمجھائے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کس پیار سے, کس محبت سے, کس اچھے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے اندر جو تھا نا, ہم نے ابراہیم کو کیا دیا, رشد دی, اس کی رشد. اس کا کیا مطلب ہے, یہ تو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رشد عطا کی, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی رشد عطا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ فیض جو ہے نا بقدر استعداد کا اصول ہے اللہ کے ہاں, کہ جس شخص کے اندر جتنی استعداد ہوتی ہے نا, اتنا ہی اللہ اس کو فیض دیتے چلے جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مختلف امتحانوں سے گزرے, اور مختلف امتحانوں سے گزرتے ہوئے جس استعداد کا انہوں نے ثبوت دیا, اللہ نے اس کو جانا اور اس کے مطابق ان کو ہدایت اور معرفت عطا کی. یہی معاملہ اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ ہے. جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے جو ہے وہ آزمایا, کس چیز میں آزمایا, پہ کلے ماتن, کئی کئی طرح سے, کئی کئی باتوں سے آزمایا. یعنی کلمات سے مراد کیا ہے کہ احکام شریعت, مناسک حج, بیٹے کا ذبح کرنا, ہجرت, نارے نمرود, بہت سی آزمائشیں تھیں جس میں ان کو ڈالا گیا. فاتمہن, اور ان سب پہ وہ پورا اترے. قال انی جائلک للناس اماما, تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم, اب ان آزمائشوں میں پورا اترنے کا یہ صلہ ہے کہ اب میں تجھے جو ہے وہ امام الناس, لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ جو متقیوں کے جو وہ امام بنے, تو ایسے ہی نہیں بنے, بلکہ کیا ہے کہ جب وہ اپنی آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ متقیوں کا امام بنا لیا. और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है उनको भी बहुत सी आजमाइशों में से गुजारा, वफतन्ना का फुतूना, है ना, और हमने तुझे आजमाया और अच्छी तरह आजमाया, और जब वो भी आजमाइशों में से निकले और ठीक तरह से निकले तो अल्लाह ताला कहते हैं वस्तना तू काली नफसी, कि मैंने तुझे अपने काम के लिए जो है वो चुन लिया, अब हो गया तू मेरे काम का। इसका क्या मतलब है कि दिल टूट कर बड़े काम का हो जाता है ना, जब दिल टूटता है ना, आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जैसे मसलन मैं आज आपको एक औरत की मिसाल बता रही थी कि उसको उसके घर वालों ने, उसका बहू थी और घर वालों ने, सास और घर वालों ने, बाकियों ने उसका मजाक उड़ाया छोटी सी एक बात पे, तो उसका दिल बहुत टूटा। तो जब दिल टूटता है तो आप क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं ना, सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, और जो टूटा हुआ दिल है ना ये बहुत काम का है, और जो बहुत भरा हुआ दिल होता है तो उसमें किब्र आ जाता है। तो यहां पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये ऐलान करना कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी होशमंदी बख्शी थी, उसकी रुश्द बख्शी थी, मिन कबलू, इसके क्या मानी है कि पहले से ही, उससे भी पहले, तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो रुश्द और जो हदायत बख्शी थी वो बाद में नहीं बख्शी थी, उससे भी पहले बख्शी थी। तो उससे भी पहले जो है इससे मुराद दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनकी सलाहियतों को जांच कर उनको वो दर्जा और वो मर्तबा अता किया, और उसका एक वाफिर हिस्सा जो है वो उनको जो है वो अता किया, और रुश्द और हदायत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक खास मकाम था। और ये बात ऐसी थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान के मुनासिब थी, और वो अपने इल्मी और अमली कमालात में बड़े कामिल थे। तो गोया के इससे भी पहले, तो किससे पहले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, ये जो और जलील कदर पैगंबर जिनको ये लोग जो इनके सामने थे अहले मक्का के या जो है वो अहले किताब के, तो उससे भी पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी रोशन दी थी। इससे क्या बात पता चलती है, यानी हर शख्स की इस्तेदाद के मुताबिक अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं ना, जितना जो मेहनत करता है, जितना मुशक्कत करता है, और जितना कोई शख्स जो है वो आजमाइशों में अच्छे रवैये दिखाता है, खैर और शर की आजमाइशों में कोई शख्स जो है वो सब्र और शुक्र की रविश पर चलता है और उसका रवैया जो है वो खराब नहीं होता, बुरा नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करते चले जाते हैं। तो यही अल्लाह ताला का ये ऐलान करना, वकुन्ना बिही आलिमीन, के हम उससे खूब जानते थे, हम उसको खूब उससे वाकिफ थे। इससे मुराद क्या है कि ये जो मर्तबा बुलंद उनको दिया, ये जो उनको पैगंबरों का इमाम बनाया, मुत्तक कौमों का इमाम, कौन सी कौमें, बनी इसराइल भी और बनी इस्माइल भी, और कई पैगंबर नस्लों में पैगंबर, तो ये मकाम अल्लाह ताला कहते हैं मैंने यूं ही नहीं बख्श दिया, बल्कि निहायत कड़े इम्तहानों में डालकर उनको परखा, और जब वो उन इम्तहानों में पूरा उतरे तो फिर हमने जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको जो है वो रुश्द, उसकी रुश्द दे दी। तो यहाँ पे जो है वो क्या सवाल है जो मेरे और आपके नाम है, क्या बात है जो मुझे और आपको बताई जा रही है कि निस्बत तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने अंदर किरदार तो पैदा करें, है ना। तो अहले मक्का भी निस्बत तो उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थी ना, और वो कहते थे कि हम उनकी औलाद में से हैं, लेकिन वो तौहीद परस्त थे, उनकी औलाद शिर्क में डूबी हुई, और हमें भी निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे और उनका इत्तबा हम पर फर्ज। और हम ये कहते हैं कि आजकल के जो भी ये फिल्मी एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, और जो भी ये मॉडलिंग करने वाली औरतें हैं, ये जो अखबारात में जिनकी तस्वीरें आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि इनको हमने अपना रोल मॉडल बनाना है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं कि इससे पहले भी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी होशमंदी बख्शी थी। اس پر خاص طور پہ سوچے رشدہو، اس کی رشد، تو ہماری رشد کا کیا حال ہے، ہماری عقل اور ہماری ہوشیاری، ہماری حسن تدبیر، اور ہمارا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے آزما رہے ہیں نا، تو ان آزمائشوں میں ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے حالات ہی اچھے نہیں ہیں اس لیے میں اچھے مسلمان نہیں بن سکتی، میرے حالات بڑے خراب ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی کے حالات برے ہو سکتے ہیں. آگے اس کی تفصیلات دیکھیے کہ اللہ کا یہ اعلان کرنا کہ ہم اس کو خوب جانتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں تھے بلکہ خوب جانتے تھے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہی نہیں نواز دیا، اہلیت موجود تھی تو نعمت سے نوازا. بعض کا تو ہوتا ہے نا، فلاں کو فلاں عہدہ کیوں دے دیا، فلاں کو فلاں چیز کیوں دے دی. وہ جیسے جو ہے وہ محمود و ایاز کا واقعہ، کہ ایاز سے محمود جتنی محبت کرتا تھا باقی اپنے درباریوں سے نہیں کرتا تھا، تو وہ جلتے تھے، حسد میں شریک ہوتے تھے، حاسد بنتے تھے. لیکن ایاز کون تھا؟ وہ زیادہ اطاعت کرنے والا ہے نا. وہ ہیرے والی کہانی آپ کو سنائی ہوئی ہے، وہ آپ جو ہے وہ یاد رکھے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ متقیوں کے امام تھے، مسلم حنیف تھے، عوام منیب تھے اور رشید تھے، تو اللہ نے ان کو بہت نوازا. اب اس کی ان کی رشد کی مثال آپ سمجھیں آگے، دیکھیں کہ رشد ان کا کیا تھا. ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں بڑا عقل مند ہے، لیکن کس کو ہم عقل مند کہتے ہیں؟ تو ان کے رشد کی کیا مثال ہے؟ اذ قال لابیہ، جب اس نے اپنے والد سے کہا، لابیہ اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا، وقومہ اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ما ہاذہ التماثیل، یہ کیا ہیں مورتیاں، یہ کیا مورتیں ہیں، اللاتی انتم لہا عاقفون، کہ جن کے تم لوگ گرویدہ ہو گئے ہو، جن کے تم موتقف ہو گئے ہو، جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ تماثیل تمثال کی جمع ہے، اصل میں کسی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ، یعنی کوئی کسی انسان کی شکل اور ویسے ہی کوئی پتھر کا مجسمہ بنا دیا جائے، یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر. آپ بعض یہ جو ہے میوزیم میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس میوزیم میں یا اس ہاسپٹل میں بہت سے اچھا کردار ادا کیا، تو ان کی انہوں نے بنائی نہیں ہے، تصویریں ہی بنا دی ہیں دیواروں پر. تو جو ہے وہ اس سے یہ مورتیاں مراد ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا کہ اپنے معبودوں کی تمثال بنائی ہوئی تھی، تماثیل یعنی تمثال بنائی ہوئی تھی، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی. اور عاقفون جو ہے، عاقفون جو ہے یہ عاقف سے فاعل کا صیغہ ہے، عاقف اس کے معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، کسی چیز پر جھک جانا، اس پر جم کر بیٹھ جانا. تو اسی سے اعتکاف بھی ہے، انسان اللہ کی عبادت میں اعتکاف میں جم کر بیٹھتا ہے، پوری یکسوئی اور انعماق کے ساتھ اسے لو لگاتا ہے. آپ دیکھ لیں اعتکاف کے دنوں میں روٹین کے جو کام ہیں وہ بھی جائز نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں انسان کرتا نا. اور یہاں پہ عاقفون، عاقف کی جو جمع ہے، یہاں پہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا اس چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی اتنی عزت کرتے تھے، ان کی اتنی عبادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے استہانوں پر مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کے جو بھی وہ بنی ہوئی تھی جگہ وہاں جا کر انہوں نے مجاوری اختیار کر لی تھی، وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے. اور جب انسان کسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بس ہر وقت اسی کی بات، اسی کا ذکر، اسی کے پاس. تو اب وہ اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھتے ہیں، ما ہاذہ التماثیل، کہ یہ کیا مورتیں ہیں، اللہ تی، تماثیل چونکہ مؤنث ہے تو اللہ تی بھی مؤنث آ گیا، جن کے تم لوگ جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے ہو اور جم کر بیٹھ گئے ہو. یہاں ایک بڑی یہاں بات ہے، ایک ذکر ہے باپ کا اور دوسرا قوم کا. باپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے نا خاندان کے اندر، گھر کے اندر، اور باپ سے بات کرنا، امی سے کر لیں گے چپکے چپکے جو بھی کہنا ہے، لیکن باپ سے جا کر کیا جائے، یہ چیز بڑی مشکل ہے نا. مجھے خود بھی یاد ہے کہ جب وراثت کا قانون میں نے پڑھا، اور ہم لوگ زمیندار ہیں اور ہمارے ہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے وراثت میں اپنی میں حصہ چاہیے، تو ابھی آپ مجھے جہیز دے دیں گے. جب جہیز بننے لگا تو میں نے کہا پھر آپ کل کو جب میں کہوں گی مجھے حصہ دیں تو پھر کہیں گے کہ پھر جہیز کیوں لیا تھا، कोई भी ये बात ना कहे तो मुझे लालच तो नहीं है, मैं तो अल्लाह के कानून को नाफिज करना चाहती हूँ और मुझे विरासत में हिस्सा दें। तो कहने लगी कि जाओ जाके अपने बाप से बात करो। तो मैंने कहा नहीं, आपसे जो कह दिया आप अब्बा जान से बात कर लें। तो कहने लगी नहीं जाके करो। तो बहरहाल जाके की मैंने रोते धोते और कुरान खोल कर और बताया, पूरी सूरत निसा की आयतें पढ़कर जितनी समझ थी कि ये अल्लाह का कानून है, उसके मुताबिक मुझे जो है विरासत में हिस्सा चाहिए ना, और मुझे दहेज जो है वो नहीं चाहिए। और अब्बा जान हमारे हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक हो भी चुका था। मेरी बहनें भी रोने लगी, कहने लगी कि अब्बा जान पहले ही हार्ट के मरीज हैं और ऊपर से तुम ऐसी बातें करती हो। तो मैंने कहा अल्लाह का कानून है ना, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। तो असल बात क्या है, तो कोई भी बात जो हक की बात है, तो जो शख्स जितना ऊंचे ओहदे का हो, खानदान में या कौम में या मुल्क में, उससे बात करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन हक बात करना यही पैगंबरों का उसवा है ना, और यही हमारे लिए रोल मॉडल है कि हम वो हक बात करें, जो कि है बड़ी मुश्किल लेकिन करनी चाहिए। करने से जुर्रत भी आती है और फिर ये कि यही तो अमल है जो दुनिया से लेकर जाने हैं। तो उन्होंने अपने बाप से भी बात की, आप सोचें, और बाप उनका हमनवा नहीं था, बाप उनका साथी नहीं था, वो अल्लाह को एक मानने वाला नहीं था, वो तो मुशरिक कौम से ताल्लुक रखता था। और बाप कौन था? बुतगर था, बुतों को बनाने वाला था, बुतों का कारोबार करता था, कौम में ही और अपनी कौम से। यानी कौम आप देखें, कौम मजमुआ है लोगों का। आप तसव्वुर करें इस बात का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार कितना खूबसूरत है, कितना अजीम है और कितना दलेर है कि अपने बाप और अपनी कौम से कहते हैं कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनके तुम लोग गिरविदा हो गए हो। कालू वजदना, उन्होंने जवाब दिया, हमने पाया है आबा अना लहा आबिदीन, अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए, कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए जो है वो पाया है। तो अब जो है कौम के लोग जो हैं वो क्या दलील देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा का यही तरीका रहा है, तकलीद आबा है ना। तो इस आयत का निचोड़ क्या है कि वो जो दलील देते हैं, जो उजर पेश करते हैं, वो ये है कि तकलीद आबा, कि हम अपने बाप दादा की पैरवी करते हैं। अब आप देखिए कि आज यही बात तो हम भी कहते हैं ना, बहुत सी हमारी शादी ब्याह की और मौत के वक्त की और खानदानों के के अंदर रस्म और रवाज ऐसे हैं कि जो है वो सवाए तकलीद अबाओ अजदाद के और कुछ भी नहीं है, कुरान और सुन्नत का उसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है। जैसे अब जो है वो ये अब पता है कि 3 दिन सोग मनाना है जब फौत हो जाए कोई, सिर्फ शोहर का सोग जो है वो 4 माह 10 दिन है, लेकिन अब सोग कितना मनाया जाता है, ये 3रा है, ये 10वां है, 7वां होता है शायद, फिर 10वां होता है, फिर ये 40वां है, फिर बरसी, हर साल फिर बरसी होती चली जाती है। और जब वो 40वां होता है तो ये रिवाज है कि जो बहू के खानदान के मेके वाले होते हैं ना, वो जोड़े लाते हैं पूरे खानदान के घर वाले के, और फिर जेवर भी लाते हैं साथ, और फिर खाना भी वो देते हैं, और फिर जैसे किसी सास की अगर 3 बहुएं हैं तो जिसका कपड़ा अच्छा ना आए, जिसका जेवर अच्छा ना आए, तो फिर उस पर बाकी खानदान वाले मिलकर बातें करते हैं, और 40वें में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और देखते हैं एक दूसरे के ने क्या दिया, और फिर जो घर वाले बच्चे हैं उन्होंने 40वें का खाना कैसा दिया। अगर वो अच्छा खाना नहीं होता तो खानदान वाले कहते हैं कि लो अपने बाप को जो है वो दाल पर ही और रोटी तक उसको नहीं उसको खिलाई ना, बाप की रूह को। अब आप सोचें, और फिर इसमें खर्चा भी होता है, फिर सब कहते हैं कि अच्छा हम मानते तो नहीं है वैसे 40वें को, बाज लोग ऐसे भी होते हैं मानते तो नहीं है, लेकिन अब हो रहा है खानदान में तो फिर अच्छा चलो फिर अब जाना तो चाहिए ना, फिर नाराज हो जाते हैं ना, हम मानते तो नहीं है लेकिन बेटी दी हुई है, मानते तो नहीं है लेकिन नंद है उसको बेचारे को सब बातें करेंगे, तो फिर जो है तो ये है रवाज। और फिर कहते क्या है कि ये हमारे यहाँ अब रस्म और रवाज, और फिर लोग क्या करते हैं उसको दीन का हिस्सा समझने लगते हैं। मैं आपको मिसाल से समझाया आपको, इसी तरह डेथ हो गई है तो पहली ईद नहीं मनानी, डेथ हो गई है बहन की तो पहली ईद नहीं मनानी, भाई की तो, बाप की तो, माँ की तो, औलाद में से किसी की तो, शोहर की हो जाए तो 4 माह 10 दिन का सोग है, लेकिन बाकी किसी भी डेथ पर जो है ना पहली ईद भी मनाएं, दूसरी अगर 3 दिन के अंदर है तो सोग है, यानी अगर डेथ के दूसरे और तीसरे दिन ईद आ गई है तो सोग है, बाकी सोग फिर कोई नहीं है। तो पहली ईद भी नहीं मनाई जाती और फिर हर साल बरसी मनाना ये भी रस्म बनकर रह गया है। तो असल बात क्या है, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो हमारे अबाओ अजदाद कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हमारा हाल क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको क्या जवाब देते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कौम कह रही है वजदना आबा अना लहा आबिदीन, कि हमने अपने बाप दादा को लहा, हा की जमीर किसके लिए आई है, तमासील के लिए आई है, अल्लाह ती की भी इसके लिए आई है क्योंकि वो मुअन्नस है, कि हमने अपने अबाओ अजदाद को इन्हीं की पैरवी करते हुए पाया। आबिदीन इबादत, इबादत क्या है, पूजा परस्तिश भी और उसके अलावा इबादत भी और अतात भी इन्हीं की करते हुए हमने अपने बाप दादा को पाया। फाल लकद कुन तुम अन तुम व आबाओ कुम फी दलालिम मुबीन। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लकद कुन तुम, कि तुम भी हो क्या दलाल मुबीन, खुली गुमराही पर। लकत कुन तुम अन तुम किस पर हो, फी दलाल मुबीन। वह आबाओ कुम, और तुम्हारे बाप दादा किस पर है, फी दलाल मुबीन, खुली गुमराही पर, कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सरी गुमराही में जो है वो पड़े हुए हो। अब आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है उनकी जो हमीयत थी, असबियत थी, और बाप दादा से जो अंधी मोहब्बत करते थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूरे मार्फत अता किया था, नूरे बसीरत, रुश्द रुश्द उनको अता की थी, तो इसलिए उन्होंने बड़ी अजीमत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी बेखौफी के साथ फरमाया कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में थे, है ना। तो ये दलील नहीं है कि बाप दादा गुमराह थे तो हम भी गुमराह रहेंगे, ये कोई दलील नहीं है कि बाप दादा जिन रस्मों को जमाने जाहिलियत से लिए चले आ रहे हैं, अपने सीने के साथ लगाए हुए थामे हुए चले आ रहे हैं, तो अब उनको अकल और फितरत की कसौटी पर परखा ही ना जाए। तो आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत देखें, उनकी तौहीद परस्ती देखें। बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। और हम लोग क्या कहते हैं कि नाराज ना हो जाए रिश्तेदार, है ना, फिर जो है वो अपना कभी कारोबार खतरे में लगता है और कभी लेन देन के मामलात, और देखते हैं अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ, और फिर जो है वो इस ये जबान जो है ना ये गुंग हो जाती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, और कुव्वते गोयाई जो है हमारी सलब हो जाती है और हम आगे होकर बात नहीं करते। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, और उसके बाद कौम के लोगों ने कहा, क़ाल वो बोले, अजेतना बिल हक्की अम अंता मिनल लाइबीन। अब आप देखिए कि कौम के लोग जो हैं दो बातें उनसे करते हैं, उनके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि तुम और तुम्हारे बाप दादा फी दलाली मुबीन, खुली गुमराही में थे, उनके लिए बड़ी ही अनोखी और अचंभे की बात थी। वो बड़े ही हैरान थे कि ये अल्लड़ नौजवान, जवानी जवान है, और होते हैं ना जवान बाजों का कैसी कैसी बातें कर देते हैं, तो हो सकता है इन्होंने बेसोचे समझे यूं ही एक बात कह दी हो, है ना। अब वो पूछते हैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से, अजेतना बिल हकी, कि क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है, हम अंता मिनल लाइबिन, या तू खेलने वालों में से है, या तू मजाक करता है, तेरे ख्यालात असली हैं या तू ऐसे हमसे मजाक कर रहा है, ये जो तूने बात बताई है फी दलाली मुबीन वाली, तो क्या ये तेरा नारा बड़ा ही लाओबाली नारा है, बड़ा ही गैर संजीदा नारा है, तो अब सच सच बता कि ये अलहक है, क्योंकि हक से मुराद संजीदा और सोची समझी हुई बात है। तो बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, और फिर आगे से पूछते हैं कि ऐसी आवाज तो हमने कभी सुनी नहीं जो तूने लगाई है, तो ए इब्राहिम कहीं तू हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। आप देखें बाज़ औक़ात आपके अपने बच्चे आपसे जब सच्ची बात करते हैं, हक बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि सच बात कर रहे हो कि तुम जोक कर रहे हो, है ना, तो वो आगे से कहते हैं फन नहीं कर रहे, फनी बात नहीं है, या आप अपने बच्चों को इस्लाम की कोई अच्छी बात बताते हैं तो आपके बच्चे पूछते हैं कि आप फन कर रहे हैं, आप हमसे मजाक कर रहे हैं, या वाकई इस्लाम में ऐसे ही है, होते ना ऐसे? तो बिल्कुल वही, वो दो बातें जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है वो सामने रखती हैं, क्योंकि उनको अपने मजहब की हकानियत पर बड़ा पुख्ता यकीन था। जो बाप दादा का मजहब था उस पर इतना यकीन था, कहने लगे कि ये जो तुमने बात बताई है संजीदगी से है या दिल लगे की बात है? अमानता मिनल लाइबीन, के तुम भी जो है वो मजाक करने वालों में से हो, खेलने वालों में से। लाइब, लाइब से लाइबीन है, लाइब खेलने वाला। काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाती वल अर्दी। अब आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और उनकी जो नारा हक था उसका एक और कदम। डरे नहीं हैं, अकेले हैं पूरी कौम और अपने बाप के खानदान के खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं, और अब दावत हक का एक और कदम आगे बढ़ाया है। क्या कहते हैं? बर रब्बुकुम, बल्कि तुम्हारा रब, रब उस समावाती वल अर्दी, रब है आसमानों का और जमीन का। और आसमानों जमीन का रब है कौन? अल्लज़ी फतरहुन, जो इनका पैदा करने वाला है, जिसने आसमान और जमीन को तराश खराश कर खूबसूरत बनाया। जमीन जो है इस पर चलते हैं, न लोहे की तरह सख्त है न पानी की तरह नरम है, इसके सीने को खोदते हैं, उसमें खेत हैं, हरियाली हैं, फल फूल हैं, घर बनाते हैं, ऐश करते हैं, और आसमान छत की तरह हमारे ऊपर है, नीला आसमान जगमग जगमग करते सितारे, ऊपर से बारिश, अनगिनत नेमतें। तो तराश खराश कर इतना खूबसूरत बताया है, बनाया है, कि हल तराम इन फतूर, कोई फतूर भी नजर नहीं आता, कोई नक्श नजर नहीं आता। और साथ ही कहा ये बात, कहना रब्बुकुम तुम्हारा रब, ये नहीं कह रहे कि रब्बी मेरा रब, बता रहे हैं ये तुम्हारा रब है। वअना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और मैं जो हूं इस पर तुम्हारे सामने गवाही देता हूं। क्या बात कही? कि मैं तो इसी बात का गवाह हूं और कायल हूं। क्या अब इनका ये बात कहना माना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, इसका मतलब क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही एक बात पेश नहीं कर रहा, इस बात का मुझे मुशाहिदा हासिल है, मैं इसकी विटनेस हूं, मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारा माबूद ये मूर्तियां नहीं है, बल्कि वो रब है जो आसमानों और जमीन का मालिक और इनका पैदा करने वाला है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बड़ी ही दलील के साथ और बड़े ही यकीन के साथ उनको बताते हैं कि मैं वहम और गुमान की बजाय वसूक के साथ ये बात कह रहा हूं। क्यों? वना अला ज़ालिकुम मिन शाहिदीन, देखे ना कैसी गवाही थी। और कहते हैं खुदा की कसम। तो आप देखिए कि वो भी कसम के लिए आता है, और जैसे वल फज्र वल असर, लेकिन ता जो है ये सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए ये लफ्ज हरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम, ला की दन्ना, कि मैं जरूर बजरूर इलाज करूंगा। कैद जो है किसके लिए आता है? चाल के लिए आता है, और आमतौर पे ये बुरी चाल के लिए आता है, लेकिन अच्छी चाल के लिए भी कभी इस्तेमाल होता है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अच्छी चाल चली, अच्छी तदबीर की। और यहां पे आप देखें कि ताकीद के लिए दो चीजें हैं, एक लामे ताकीद है, दूसरा नून मुशद्दद है। ला की दन्ना, मैं जरूर ब जरूर जो है तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं जरूर ब जरूर तुम्हारी जो है वो खबर लूंगा, मैं जरूर ब जरूर जो है तुम लोगों का जो है वो पता करूंगा। बल्कि आप यूं भी कह सकती हैं कि मैं जरूर ब जरूर जो है वो तुम्हारे बुतों से दो दो हाथ करूंगा, ये भी आप कह सकती हैं। लाकीदन ना, दो दो हाथ करूंगा, अस्नामकुम तुम्हारे बुतों से। तो बुत कौन से थे? जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए थे। बाद अंतवल्लू मुदबरीन, जब तुम जो हो बाद इसके अंतवल्लू के तुम मुड़ जाओगे, मुदबरीन पीठ फेर कर, यानी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, उनसे दो दो हाथ करूंगा। इससे ये बात पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई तो इसकी भी कुछ वजह है क्यों कसम खाई, इसलिए कि कौम के लोग जो थे वो अपने आप को गुमराह ही नहीं समझते थे, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समझाने से समझे ही नहीं, है ना। जब उन्होंने कहा कि फी दलाली मुबीन, तो कहने लगे कि बता के हक है भी या अंता मिनल लाइबीन। जब उन्होंने अगली दलील दी और वो फिर भी नहीं माने, यहां तक कि उन्होंने कसम खाकर कहा कि अब जो है जब तुम अपने बुतों के पास नहीं होगे तो तुम्हारे मुश्किल कुशाओं की मैं खूब खबर लूंगा, तुम्हारे खुदाओं की मैं खूब खबर लूंगा। और कहते हैं कि बाज लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो ये कहा कि जब तुम जो है वो चले जाओगे तो तवल्लु मुदबिरीन जो है ना, वो मुफस्सरीन कहते हैं कि इन अल्फाज से ये पता चलता है कि ये जो बातचीत हुई है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम की, क्योंकि तवल्लु मुदबिरीन बता रही है, ये फेल क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग थे वो लोग, तवल्लु तवल्ला नहीं है, मुदबिर नहीं है, मुदबिरीन है, मुदबिर की जमा है ना मुदबिरीन, तो कुछ लोग थे जो जमा थे, तो कौम किसी जगह पे जमा थी और वो जगह कौन सी थी, बुतखाना। मुफस्सिरीन कहते हैं ये ऐसा महसूस होता है कि ये दावत बुतखाना के अंदर किसी मौके पर कौम जमा है और इन दोनों में आपस में जो है वो बातचीत हुई है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर कहा कि जब आप लोग यहां से इस बुतखाने को छोड़कर घरों को चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे खुदाओं की फिर मुरम्मत करूंगा। और अब कैसे करनी है मुरम्मत वो तो नहीं बताया, उसको तो उन्होंने पोशीदा रखा, लेकिन ये कहा कि लाकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुजाजन। फिर उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसने टुकड़े टुकड़े किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। किनको किया? होम। तो चुनाचे उसने उनको जो है वो उनके जितने बुत थे ना उनको क्या किया? जुजाजन, टुकड़े टुकड़े। तो जुजाज का मतलब क्या होता है? काटना, पाश पाश करना, रेजा रेजा करना, बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि बुत स्टैचू वगैरह बने हुए थे ना मूर्तियां। इल्ला कबीर अल्लाहुम, सवाए उसके बड़े के। तो ये जो कबीर है ना, मुफस्सरीन ने इसके दो मानी बताए हैं। एक मानी तो ये है कि जो बुत जुस्से के लिहाज से, जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा था ना, उसको उन्होंने कहा कि मैं जो है ना सवाए उसके। तो कबीर से मुराद क्या है? जो बुत उन्होंने नहीं तोड़ा, उसको छोड़ दिया, तो वो जिस्म और जुस्से के एतबार से दूसरे बुतों से बड़ा था। और दूसरे मानी ये हैं कि वो जिस्म, वो सारे बुत जिस्म में तो एक जैसे थे, लेकिन बुत परस्ती के अकीदे में उनके यहां सबसे बड़ा समझा जाता था। यानी इसका फिर मतलब क्या है कि बुत परस्ती के अकीदे में, यानी इज्जत और तकरीम, ताजीम और तकरीम के लिहाज से वो बुत उनका बड़ा बुत था। समझ आई बात की आपको? कि था वो बड़ा, या तो उनके दिल में जो उनके बुत के लिए अकीदा था कि ये बड़ा काम करने वाला है, ये सबसे बड़ा है जो हमारी मुश्किल आसान करेगा, जब सब भी हमारे काम नहीं आते तो ये काम आता है, या तो अकीदे के लिहाज से उसको बड़ा समझते थे ताजीम और तकरीम के लिहाज से, या फिर जिसामत के लिहाज से। और क्यों मैं उनको टुकड़े टुकड़े उन्होंने उसको कर दिया और सिर्फ इनके बड़े को क्यों छोड़ा? बड़े को छोड़ दिया, लअल्लहुम इलैही यरजऊन, ताकि शायद वो उसकी तरफ जो है वो रुजू करें। तो जब वो देखेंगे कि सारे बुत जो हैं वो टूटे पड़े हैं, सारे बुत जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, तो वो क्या करेंगे कि फिर वो जो है वो सोचेंगे और हो सकता है वो अपने इस बड़े बुत की तरफ जो है वो रुजू करें। और हमें ये बात भी पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है बुत को, बुतों को जब सबको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद जो अपना आला था, जो कुल्हाड़ी थी ना, वो बड़े बुत की गर्दन पर डाल दी, ताकि जब वो आके देखें तो कंधे पर रखा हुआ तो कहें कि ये इसी बड़े बुत की जो है ना कारस्तानी है। और लालम इलेही अर्जुन का क्या मतलब है? ये जो है ना इलेही, हाँ इलेही की भी मुफस्सरी ने दो मानी बताए हैं। एक मानी तो यही कि वो लोग जो हैं बड़े बुत की तरफ रुजू करें, इल्जाम इसी पर आएगा। और दूसरे मानी ये हैं कि उस मौके पर फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ आए। वैसे तो मेरी बात सुनते ही नहीं ना, तो बुतों को जब टूटा हुआ देखेंगे तो क्या करें कि हो सकता है इलेही कि ये मेरी तरफ यरजून लौटें, मुझसे आकर जो है वो बात करें और मुझसे आकर ये पूछें कि ये किसने किया, इनका ज़हन मेरी तरफ मुंतकिल हो, जब मुझसे पूछेंगे तो साफ साफ मुझे बात करने का मौका मिलेगा। कालू वो बोले मन फाला हाजा बे आली हतीना, ये किसने किया हमारे बुतों के साथ, इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, ये तो कोई बड़ा ही जालिम था। अब आप देखें कि अब जब उन्होंने अपने बुतों को पाश पाश देखा, टूटा हुआ देखा, तो बहुत ही जो है वो अफसुर्दा हुए और साथ ही उनकी अफसुर्दगी जो है इससे पता चलती है। पहली बात तो ये है कि मन फाला हाजा बे आलिहतिना, ये किसने किया हमारे इन बुतों के साथ, किसने किया, इससे पता चलते है बड़े हैरान हुए, वो बड़े परेशान हुए, है ना। तो पहला जो जुमला है ना, मुफस्सरीन ये कहते हैं इससे उनकी हैरानी परेशानी का पता चलता है, और दूसरा जो है ना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक वो जुल्म करने वालों में से है, मुफस्सरीन कहते हैं कि दूसरे से उनके गुस्से और गजब का पता चलता है कि जब उन्होंने अपने माबूदों का ये हशर देखा तो उनके अंदर पहले तो ये सवाल हुआ कि ये हो कौन सकता है जिसके अंदर इतनी जसारत है, और दूसरा जो है उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार इस तरह किया कि जिसने भी ये हरकत की वो बड़ा ही जालिम है।